ओम शांति। 21 जुलाई 1973। अभी रिजल्ट आउट होने का समय आ रहा है, तो रिजल्ट आउट होने से पहले कंप्लेंट्स को कंप्लीट करो। अभी कंप्लेंट भी आप स्वयं ही करते हो, अमृत वेले से अपनी कंप्लेंट करते हो। जब तक अपनी कंप्लेंट्स है तब तक कंप्लीट नहीं हो सकेंगे, इसलिए स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिवान बन अपनी कंप्लेंट को कंप्लीट करो। अभी फिर भी लास्ट चांस का समय है, फिर नहीं तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी प्राप्ति का समय भी बहुत गई थोड़ी रही है, नहीं तो पश्चाताप का समय आ जाएगा, फिर पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए अभी जो थोड़ी रही हुई है, यह चांस भी चाहे किसी प्रकार का चांस तो है ना, तो चांस को गंवाना व लेना अपने प्रयत्न से आप जो चाहो वह कर सकते हो। इसलिए अभी से रिवाइज करो। यह तो सुना दिया कि जब रिवाइज करो व जज करो तो किस रूप में करना है। विधि तो सुना ही दी है, क्योंकि विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। तो 73 की अव्यक्त वाणी है 21 जुलाई की, जिसमें क्या सुना, बाबा ने कहा जो चांस को तो चांस को गंवाना व लेना अपने प्रयत्न से आप जो चाहो वह कर सकते हो, इसलिए अभी से रिवाइज करो। यह तो सुना दिया, क्या सुना दिया, कि जब रिवाइज करो व जज करो तो किस रूप में करना है। विधि तो सुना दी है ना, इस क्योंकि विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति हो ही जाएगी। ये जो अव्यक्त वाणी है, इस वाणी में बाबा ने शुरुआत में संसार के जो जज होते हैं, जस्टिस होते हैं, उनका उदाहरण दिया है। वो जो जज होते हैं उनका काम होता है परखना, जज करना। वो जो जज होता है वो दो आधार से जज करता है, एक बोल से एक कर्म से। तुम किस आधार से जज करते हो, बाबा ने प्रश्न पूछा, और उत्तर खुद ही बाबा देते हैं कि तुम संकल्पों से आत्माओं को जज करते हो। यदि वो जज एक गलत फैसला सुना देता है किसी के विषय में, तो उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है, या उसके जीवन का बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाता है, या उसे बहुत नुकसान हो जाता है। ये तीन चीजें होती है। यदि कोई जज किसी अपराधी अभियुक्त को गलत फैसला सुना दे तो ये सारी चीजें होती है। बाबा ने कहा तुम रूहानी जज हो। इस मुरली का टाइटल ही है रूहानी जज और जिस्मानी जज। तुम कौन हो? रूहानी जज। यदि तुम किसी के विषय में गलत निर्णय, गलत जजमेंट दे देते हो तो क्या होता है? जन्म जन्मांतर के लिए उस आत्मा की तकदीर व्यर्थ कर देते हो, नष्ट कर देते हो। इसलिए तुम्हें जज बनना है, इसलिए तुम्हें दूसरों को जज करने की पावर तुम में आनी चाहिए। ऐसे कितने ही केसेस संसार में हैं जहां पर गलत निर्णय दिया गया और सामने वाला जो व्यक्ति था वो नष्ट हो गया। वो है जिस्मानी जज। तुम हो रूहानी जज। तुम भी आत्माओं को परखते हो, तुम भी जज करते हो, पर तुम्हारा जजमेंट किसके आधार पर है? संकल्प के आधार पर। इसलिए जो भी आत्माएं तुम्हारे पास आएगी तुम्हें उन्हें जज करना है और उन्हें वो देना है जो उन्हें चाहिए। शक्ति लेने आए और तुम उन्हें शांति दो तो वो संतुष्ट नहीं होंगे। उन्हें वही दो जो उन्हें चाहिए। और फिर इसकी विधि बताई मुरली में कि तुम आत्माओं की इच्छाएं तभी पूर्ण कर सकोगे जब तुम्हारी अपनी इच्छाएं सारी समाप्त हो चुकी है। जब तुम इच्छा मात्रम अविद्या हो तभी दूसरी आत्माओं की इच्छाओं को तुम पूर्ण कर सकोगे। यदि खुद ही इच्छाओं के समंदर में, इच्छाओं की लहरों में हम डूबे हुए हैं, सांसारिक इच्छाएं, सांसारिक तृष्णाएं, सांसारिक एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं, जितना मनुष्य संसार की महत्वाकांक्षा से भरा रहता है उतना ही परमात्मा से विमुख है। आज सुबह की साकार मुरली, किसने तुम्हें, जिस जिसने तुम्हें बाप से विमुख किया उसको क्या करो? सबसे ज्यादा दुख देने वाले कौन है तुमको? जिन्होंने तुम्हें बाप से विमुख किया। उत्तर नहीं दिया बाबा ने, छोड़ दिया उत्तर। प्रश्न पूछा है, सबसे ज्यादा दुख तुमको किसने दिया है? जिसने परमात्मा से तुम्हें विमुख किया है उनको छोड़ दो। व्यक्ति का जन्म होता है, एक शिशु का जन्म होता है और उसके दिमाग में बचपन से ही एम्बिशन, अहंकार, कंपटीशन, नंबर वन होना है डाल दिया जाता है और जीवन भर इसी अहंकार से वो पीड़ित रहता है कि मुझे आगे जाना है, मुझे अव्वल आना है, मुझे फर्स्ट आना है। और जब वो नहीं आ पाता तो दुखी होता है। माँ बाप ज्यादा दुखी होते हैं। ये मार्ग ऐसा है कि जिसमें बाबा कह रहे हैं सांसारिक इच्छाएं जिसकी जितनी कम वो दूसरों की इच्छाएं उतनी अधिक पूर्ण कर सकेगा, वो दूसरों को उतना अधिक जज कर सकेगा। क्योंकि तुम यदि किसी को रॉन्ग जज कर देते हो तो जन जन की उसकी तकदीर ही व्यर्थ हो जाती है। वहां तो शायद किसी को फांसी की सजा सुना दे, गलत, शायद किसी को गलत कारागार में डाल दे कई वर्षों के लिए, जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष युवा काल कारागृह में गुजरा, बुढ़ापे में बाहर निकल कर क्या करेगा वह व्यक्ति, या फिर उसे बहुत बड़ा नुकसान। ये तीन चीजें वो जज करता है। तुम क्या करते हो? तकदीर को ही लकीर लगा देते हो। यदि तुमने किसी को गलत जज कर लिया, यदि तुमने दूसरों की इच्छाओं को तुम न परख पाए तो, इसलिए स्वयं इच्छा मात्र अविद्या। इस मुरली में बाबा ने चार चार बातें बहुत सारी बताई है। चार सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें पास होना है। बाप से चार संबंध है जिन संबंधों से उसको याद करना है। उन संबंधों की चार निशानियां हैं और उन संबंधों के चार स्लोगन हैं। चार संबंध कौन से? बाप, टीचर, सदगुरु और चौथा साजन। ये चार संबंधों से उसे याद करो। इन चार संबंधों के लिए चार बातें हैं। बाप से क्या, टीचर से क्या, गुरु से क्या और साजन से क्या। साजन से कैसे रहना है? वफा। वफा शब्द पति पत्नी के संबंध में प्रयोग किया जाता है या प्रेमियों के संबंध में। वफादार, वफा, वफा, बेवफा। तो साजन से वफादार, टीचर से ईमानदार, ऑनेस्टी। टीचर ने होमवर्क दिया और हमने किया, ऑनेस्ट। बाप से भगवान, बाप फरमान देता है, फरमान बरदार। और सद्गुरु से आज्ञाकारी, सद्गुरु जो कहे उसे मानना। चार संबंध, चार संबंधों के लिए ये चार बातें, चार सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बाबा ने कहा जैसे तुम मुरलियों को रिवाइज कर रहे हो, वैसे अपने पुरुषार्थ और अपनी प्राप्तियों को रिवाइज करो। जब से ब्राह्मण बने हो तब से लेकर अब तक क्या पुरुषार्थ किया, इसको रिवाइज करो। जब से ब्राह्मण बने हो क्या क्या प्राप्तियां हुई है, उन प्राप्तियों को रिवाइज करो। फिर चार स्लोगन याद रखो। बाप के संबंध में स्लोगन, सन शोज फादर। सपूत बन बाप को, बाप का सबूत देना है। टीचर के संबंध में स्लोगन, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। आज कहा है ऐसी एक बात, आज की साकार मुरली में आई है, कौन सी चीज अंत तक करना है, याद तुम्हें अंत तक करना है। और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। मुझे याद करो क्योंकि मैं तुम्हारा कौन हूं। आज की मुरली, मैं तुम्हारा लिबरेटर और गाइड हूं। जब तक जीना है तब तक पढ़ते रहना है। स्टूडेंट लाइक एटीट्यूड, हमेशा ये समझना कि हमने अब तक कुछ भी नहीं जाना है, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। सागर अथाह है, सागर की लहरें तरंगे अनंत है, उस अनंत परमात्मा का ज्ञान अनंत है। उस अनंत ज्ञान के लिए बुद्धि भी वैसी चाहिए। इसी मुरली में कहा है जजमेंट यथार्थ तब दे सकता है जब बुद्धि का काटा एकाग्र हो। जैसे वो तराजू उदाहरण दिया, उस तराजू में जब काटा एकाग्र होता है तब सही वजन कर सकता है। उसी तरह तुम दूसरी आत्माओं को जज एक्यूरेट यथार्थ रीति से तब कर पाओगे जब तुम्हारी एकाग्रता उतनी होगी। तो सागर अनंत है, उस अनंत सागर को धारण करने के लिए ऐसी ही एकाग्रता चाहिए। ऐसा ही दत्त चित्तर जब चेतना हो जाए तब उसके ज्ञान को आत्मसात, अंगीकार, इम्बाइब हम कर सकेंगे। नहीं तो मुरली आ रही है, मुरली आ जा रही है, हाथ में कुछ नहीं रही। बुद्धि पकड़ नहीं पा रही है, तो टीचर के संबंध में क्या समझना, हमें पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, जानते रहना है, बुद्धि को और प्रखर करते रहना है, समझ को बढ़ाते रहना है। जो समझ अभी है, जो ज्ञान का प्रकाश अब है, और अधिक प्रकाश सामने है, और आगे और आगे और आगे। इसी को अध्यात्म कहा जाता है, कहीं पर रुकना नहीं। जिसे तुम मंजिल समझ रहे हो वो केवल मील का पत्थर है। जिस उंगली को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो वो उंगली केवल दर्शा रही है कि चंद्रमा वहां है, वो उंगली चंद्रमा नहीं है। जो छोटे मोटे अनुभव हो रहे हैं वो केवल मील के पत्थर है, विराट अनुभव अभी हुआ नहीं है। उस विराट की प्यास निरंतर रहे, इसके लिए ज्ञान को समझते जाना, धारण करते जाना, ज्ञान के एक एक वाक्य को, क्या राज है, क्या अर्थ है, क्यों ऐसे कहा और कौन कह रहा है, किस समय कह रहा है, क्यों ऐसा कह रहा है कि ये भारत क्या बन गया है नरक, ये भारत क्या बन गया है पतित, ये भारत क्या बन गया है नास्तिकों की दुनिया, ये भारत क्या बन गया है कंगाल, ये भारत क्या बन गया है आज की मुरली रोगी बन गया है, रुग्ण बन गया है ये भारत, कमजोर है, ऑर्फन की दुनिया है ये। और ये भारत की स्थिति है तो हमें क्या करना है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन सी? सबको पावन बनाने की। जो बाप का बच्चा बन दूसरों को पावन नहीं बनाते वो क्या है नास्तिक। जो दूसरों को पावन नहीं बनाते वो क्या है नास्तिक। तो पढ़ाई पढ़ते रहना है, ज्ञान को समझते रहना है, अपनी समझ को बढ़ाते रहना है, समझ का जो दायरा है उसका विस्तार होते रहे, वो बढ़ते जाए। जो कल समझा था और जो आज समझ रहे वो अधिक हो, ज्यादा हो। बाप, टीचर, सद्गुरु के लिए क्या स्लोगन है? जहां बैठाओ, जो खिलाओ, जो कराओ, जहां रखाओ रखो, जहां सुलाओ, जो सेवा कराओ, आता है ना मुरलियों में, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया, हमारा अब कुछ नहीं, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, जिस हाल में राम रखे उसी हाल में रहना, thy will shall be done, तेरी इच्छा, तू चाहता है ये तो ये। ऐसा बुद्धि का समर्पण भाव। तो ये हुआ तीसरा सद्गुरु के संबंध में, और चौथा साजन के संबंध में स्लोगन, तुम्ही संग बैठू, तुम्ही संग खाओ, तुम्ही संग खेलू, तुम्ही संग श्वासो श्वास याद करू। तो बाबा ने कहा है चार सब्जेक्ट, चार संबंध, चार संबंधों की चार बातें, और चार बातों की ये चार स्लोगन, ये सारी चीजें निरंतर याद रखना, और उसके बाद फिर ये पैराग्राफ है। इतनी मुरली होने के बाद क्या कह रहे हैं, अभी रिजल्ट आउट होने का समय आ रहा है, तो रिजल्ट आउट होने से पहले कंप्लेंट्स को कंप्लीट करो। अपनी कंप्लेंट भी आप स्वयं ही करते हो, अमृत वेले से ही अपनी कंप्लेंट करते हो। जब तक अपनी कंप्लेंट्स है तब तक कंप्लीट नहीं हो सकेंगे, इसलिए स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिवान बन, अपनी कंप्लेंट को कंप्लीट करो। क्या सुना? अभी कौन सा समय है? रिजल्ट आउट होने का समय है। जब रिजल्ट आउट होने वाला होता है, परीक्षा का परिणाम जिस दिन घोषित होने वाला होता है, उस दिन क्या होता है, हलचल होती है, धड़कन बढ़ती है, और क्या होता है? जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं खुशी खुशी होती है, और जिन्होंने पढ़ाई थोड़ी कम की होती है और पेपर जिनका अच्छा नहीं गया होता उनको क्या होता है? उनको डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, पास फेल पास फेल पास फेल। वो जोक में बताते हैं ना, जिस दिन बर्थडे होता है तो कोई कॉल नहीं करता है, और जिस दिन रिजल्ट होता है तो काका के मामा के चाचा का बेटा भी कॉल करके पूछता है कि क्या हुआ। बर्थडे को कोई विश नहीं करता है, रिजल्ट में सबकी उत्सुकता है, क्या हुआ क्या हुआ, आज तुम्हारा रिजल्ट था ना, तो रिजल्ट आउट होगा, मार्क्स लगेंगे और हम देखेंगे हमारा नंबर कहाँ है। और नहीं हो तो दुख होगा, और हमारे सारे रूम पार्टनर उसका नंबर आगे हो तो, हमारा पीछे हो तो, और जिसको हम बहुत ज्ञान सुनाया करते थे फिर भी नहीं सुनता था, पर वो ही हमसे आगे है। तो बाबा ने कहा ऐसा ही, वो तो एक जीवन की परीक्षा है, किसी एक बात की परीक्षा है, ये तो जन जन का रिजल्ट आउट हो रहा है, तो कैसी तैयारियां चाहिए, कैसा हमारा पेपर दिया हुआ हो, नहीं तो दुख होगा, पश्चाताप होगा कि थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए था। पर वो लोग ऐसा भी कहते हैं हंसी मजाक में कि जो पास हो गए वो डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनेंगे, और जो फेल हो गए उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो मंत्री विधायक इस तरह से बनेंगे जो नीचे वालों को, जो पास हुए थे उन सबको कंट्रोल करेंगे। तो बाबा कह रहे अभी रिजल्ट आउट होने का समय है, रिजल्ट आउट होगा, पास फेल मार्क्स विथ। तो रिजल्ट आउट होने के पहले कंप्लेंट्स को कंप्लीट कर दो। सबसे बड़ा पुरुषार्थ यह है कि जीवन शिकायतों से मुक्त हो जाए। यदि हमारे मन में दूसरी आत्माओं के प्रति बहुत सारी शिकायतें हैं, संस्था के प्रति, यज्ञ के प्रति, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, लोगों के व्यवहार के प्रति, स्वभाव के प्रति, भाई भतीजा वाद के प्रति, पार्शियलिटी फेवरेटिज्म, किसी को सब मिल रहा है किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों, कंप्लेंट्स है, शिकायत है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमें क्यों कहा जाता है, इनको क्यों नहीं कोई कहता, कंप्लेंट से भरा चित्त है, शिकायतें हैं बहुत सारी। इसका अर्थ यह है कि हमने कर्म के सिद्धांत को नहीं समझा है। कल भी कहा था हर एक आत्मा को वही मिल रहा है जो उसका अधिकार है, कोई बहुत आगे जा रहा है, आगे भी इसलिए जा रहा है क्योंकि उसका अधिकार है, उसका भाग्य है, हर एक को वही मिल रहा है जो उसकी साधना है, कोई बहुत पुरुषार्थ कर रहा है कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। यदि हम इस यज्ञ की तरफ साक्षी होकर देखें तो कितनी कम आत्माएं हैं जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रही है, वास्तव में वो पुरुषार्थ जो भगवान कह रहा है मुरलियों में, वो तपस्या जो मुरलियों में आ रही है परिभाषा, कितनी कम है होगी ओवरऑल, क्योंकि सबका ध्यान सेवाएं करते करते कहीं और चला जा रहा है। तो कंप्लेंट्स को खत्म कर देना, कर्म के सिद्धांत को जानना, कर्म फिलॉसफी को समझना, हर एक एक्टर के पार्ट को समझना, भाग्य को समझना, प्रारब्ध को समझना, अतीत को समझना, भविष्य को समझना, वर्तमान विशेषताओं को समझना, बीमारियों को समझना क्या है, उसके संस्कार को समझना, स्वभाव को समझना, वो ऐसा जो कर रहा है, बाहर से जो व्यवहार है उसके पीछे कुछ और है। कोई व्यक्ति शराब पीता है, क्यों पीता है? कोई जुआ खेल रहा है, क्यों जुआ खेल रहा है? कोई मांसाहार कर रहा है, क्यों खा रहा है? क्या ये बुरे लोग हैं? क्या हम ये कहेंगे कि ये लोग ये करते हैं इसके लिए ये लोग बुरे हैं? कौन सी अतृप्ति है जीवन में? कुछ तो है जो बाहर दिखाई दे रहा है व्यवहार, वो एक प्रतिबिंब मात्र है जो अंदर चल रहा है उसका। केवल उसके आधार से व्यक्ति को जज नहीं किया जा सकता है। चेतना में जो घटनाएं घट रही है और व्यवहार में घटनाएं जो घट रही है, व्यवहार की घटनाएं चेतना की घटना का प्रतिबिंब है, बट अ रिफ्लेक्शन। इसलिए केवल बाहरी जो कुछ है वो सर्वस्व सब कुछ नहीं है, अंदर क्या हो रहा है उसको समझना है। केवल बाहरी व्यवहार सब कुछ नहीं। इसलिए जो व्यक्ति बाहर से दिखा रहा है शायद अंदर से कुछ और संघर्ष चल रहा है, बाहर से क्रोध कर रहा है परंतु इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, बाहर से सबको डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है परंतु अंदर से कुछ और चाहता है, अंदर से शायद पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, उसकी ये अभिव्यक्ति है। चाहता वो भी है पर नहीं हो पा रहा है, अतृप्त है, असंतुष्ट है, अपनी प्यास, अपना स्टार्वेशन बुझा रहा है टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब, वीडियो, ये सब बातों से। चाहना कुछ और है परंतु रिक्तता है, वैक्यूम है, खालीपन है, एम्प्टीनेस, उसको वो भर रहा है। हाँ, वो दूसरी बात है, उसे मार्ग पता नहीं उसे भरा कैसे जाए, क्योंकि इस समय परवश है, सारा ज्ञान जानते हुए भी आत्मा परवश है, क्योंकि ज्ञान प्रकाश नहीं बना है, ज्ञान केवल शब्द रह गए हैं, निराश शब्द। उस ज्ञान ने आंदोलन उत्पन्न नहीं किया है भीतर, इसलिए कंप्लेंट्स है, ढेर सारी कंप्लेंट्स है, एक एक व्यक्ति और एक एक वस्तु और एक एक स्थान, एक एक समय के विषय में कंप्लेंट्स है कि यहां ये नहीं होना चाहिए, यहां ये होना चाहिए, ये ऐसा क्यों करते, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको यहां रखा किसने, हम होते तो कब का निकाल दिया होता, किस किस को निकालोगे, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को निकालते निकालते हम ही निकल जाए। कंप्लेंट से स्वयं को मुक्त करना है। हमारी किसी के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं, ये साक्षी भाव कम से कम दो बार सुबह अमृत वेला और शाम ड्रामा की सारी पॉइंट्स याद करके धारण करना है। ये जो हो रहा है न्यायकारी है, अन्याय इस ड्रामा में नहीं है कहीं, क्योंकि हम एक जन्म में देख रहे हैं। आज की मुरली में बाप कहते हैं, तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूं। तुम्हें कुछ पता नहीं है तुम क्या क्या करके आए हो। तुम्हारा लेखा जोखा मेरे पास है, तुम्हारी कर्म कहानी मेरे पास है, तुम्हारा अकाउंट्स मेरे रजिस्टर में है। इसलिए एक पुरुषार्थ है ये, शिकायत से मुक्त हो जाना। व्यक्ति और वस्तु और स्थान, किसी की कोई शिकायत नहीं, क्योंकि जब तक कंप्लेंट्स है तब तक कंप्लीट नहीं हो सकेंगे। कंप्लीट अर्थात संपन्न, संपूर्ण, समान, समीप, सिमिलर टू दी फादर। इसलिए स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिवान बन, अपनी कंप्लेंट्स को कंप्लीट करो, स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाओ, स्वयं ही शक्तिशाली बन जाना। आज कहा ना वरदान में, तुम कौन हो? स्वराज्य अधिकारी। कुछ भी आकर्षित तुम्हें नहीं कर सकता, इंद्रियों के तुम मालिक हो। अभी फिर भी लास्ट चांस का समय है, फिर नहीं तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। टू लेट का बोर्ड, सोचो कोई ट्रेन हमें पकड़नी है और हम बहुत तेज गति से गए, ठीक है, और स्टेशन पहुंचे और देखा ट्रेन हमारे सामने तेजी से जा रही है सामने के प्लेटफॉर्म में, तो कैसा लगता है? और हमारा जाना बहुत जरूरी था और बहुत सारा सामान है, हाफते हाफते हम पहुंचे क्योंकि बीच में ट्रैफिक जैम, रोड कुछ एक्सीडेंट हो गया, हम पहुंचे, हम पहुंच रहे और ट्रेन जाते हुए दिख रही है, ये जा रही है आगे के प्लेटफॉर्म में, तो क्या होगा? दुख होगा ना। ये तो ट्रेन है, सोचो जीवन की ट्रेन के लिए ही टू लेट हो जाए तब क्या होगा? ये तो ट्रेन दूसरी पकड़ी जा सकती है, परंतु जब पुरुषार्थ की ट्रेन में टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तब क्या करेंगे? फिर एक ही आंसू वाली ट्रेन बाजू में खड़े रहेगी, पश्चाताप की ट्रेन, आंसू बहाते बहाते जाना उसमें बैठकर। समय से पहले पहुंचना है, समय से पहले संपूर्ण बनना है। इसलिए बाबा कह रहे हैं बहुत गई थोड़ी रही है, थोड़ा रहा है, बहुत पहले ही गवा दिया तुमने। संकल्पों को गवाया, समय को गवाया, शक्ति को गमाया, जीवन ऊर्जा को गमाया, थोड़ा ही रहा है। और जिसमें गवाया, जिस व्यक्ति के प्रति लगाया, जिस संबंध में इतनी ऊर्जा लगाई, जिस संबंध में इतने बोल लगाए, इतने मैसेजेस लगाए, इतने व्हाट्सएप लगाए, इतना समय लगाया, पैसा लगाया, हाथ को कितना दुखाया फोन पर पकड़ पकड़ के, कुछ और भी कर सकते थे परंतु फोन पर लगे थे, और मिला क्या, निष्पत्ति क्या, क्या सामने वाली आत्मा संतुष्ट या हम संतुष्ट? कुछ भी नहीं, वो भी अतृप्त और हम भी अतृप्त, दो भिखारी 10 साल साथ में ही भीख मांगते रहे, दोनों ही भिखारी रहे और सोच रहे थे हम तृप्त कर रहे एक दूसरों को, मिला किसी को कुछ नहीं, बेचैनी, डिस्टर्बेंस, बहुत गई थोड़ी रही है। नहीं तो पश्चाताप का समय आ जाएगा, फिर पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए अभी जो थोड़ी रही हुई है, यह चांस भी चाहे किसी प्रकार का चांस तो है ना, तो चांस को गवाना व लेना, अपने प्रयत्न से आप जो चाहो वह कर सकते हो, इसलिए अभी से रिवाइज करो। मुरलिया बहुत रिवाइज कर लिया, अभी पुरुषार्थ को रिवाइज करो, प्राप्तियों को रिवाइज करो। शक्तिशाली वाक्य है इस मुरली का। यह तो सुना दिया कि जब रिवाइज करो व जज करो तो किस रूप में करना है। शुरुआत में, शुरुआत ही वहां से की है, जज, बुद्धि का काटा, कैसे करना, इच्छा ये, इच्छा मात्र अविद्या बनना, चार सब्जेक्ट, चार संबंध, चार बातें, चार स्लोगन, और उसके बाद लास्ट में ये चल रहा है। विधि तो सुना ही दी है, क्योंकि विधि पूर्वक करने से सिद्धि की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। तो रिवाइज करो और जज करो। रिवाइज करना अर्थात क्या करना, रिवाइज करना अर्थात, रिवाइज करना अर्थात क्या, एग्जाम में स्टूडेंट्स एग्जाम के पहले रिवाइज करते हैं, जो पढ़ा है उसकी पुनरुक्ति करना, फिर से पढ़ना, फिर से पठन करना, फिर से पाठन करना, पाठ करना। पाठ अर्थात, पाठ अर्थात रिपीट। भारत ही शायद एकमात्र ऐसा देश होगा जहां पाठ किया जाता है, गीता पाठ। विदेश के लोग जब भारत आए थे तो कहने लगे थे कि ये बार बार क्यों पढ़ते हो, एक ही किताब, एक बार पढ़ लिया ना बस काम खत्म, दोबारा पढ़ने की क्या आवश्यकता है, एक किताब एक बार पढ़नी चाहिए। पर इन्होंने देखा ये भारत में दो दो फिर पढ़ रहे, वो भी ठीक, ये तो रोज सुबह पढ़ रहे। एक है पढ़ना, एक है सोचना, एक है मनन करना। मनन अर्थात डूबना, गहराई में जाना, उस ज्ञान को पूरा सख चूस कर लेना, सोख लेना स्वयं में। उसके लिए रिवाइज की, रिवीजन की आवश्यकता है। बार 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 पढ़ना, क्योंकि ये जो साधारण दिखने वाले वाक्य है इतने साधारण नहीं, क्योंकि परम चेतना से निकल रहे हैं ये वाक्य, साधारण कॉन्शियसनेस से नहीं, सुप्रीम कॉन्शियसनेस विथ सुप्रीम पावर्स, वह परम चेतना की परम शक्ति इन वाक्यों में समाई हुई है। हां, पढ़ने वाला कम शक्तिशाली हो सकता है, इन्हें समझ भी नहीं सकता है और बिना समझे पढ़ाए, परंतु सिद्धांत जो है वो शक्तिशाली है, वो सत्य है। इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट हो सकता है, नॉट द प्रिंसिपल्स। इसलिए इन वह वाक्यों का बार बार अध्ययन, बार बार मनन, रोज हर एक को व्यक्तिगत पुरुषार्थ के लिए बता रहे, एक अव्यक्त वाणी पढ़नी है। जो साकार मुरली चल रही है वो अलग, जो यहां ये क्लास चल रही है ये अलग। एक अव्यक्त वाणी इसलिए पढ़नी है, इसलिए नहीं कि मुझे दूसरों को रिवाइज करानी है, सिखानी है, समझानी है, बताना है, इसलिए नहीं, पर्सनल, व्यक्तिगत, ये मेरे केवल मेरे लिए है। और वो जो होगा सबसे ज्यादा धारणा भी उसी से होगी। जैसे हम इसलिए करते कि मुझे किसी को बताना है, सुनाना है, समझाना है, तो ध्यान कहीं और जाता है। इसलिए कुछ बातें प्राइवेट हो, अत्यंतिक प्राइवेट, कि जो केवल मैं अपने स्वयं के लिए कर रहा हूं। दूसरों को सुनाने के लिए बहुत सुना दिया, समझा दिया, पढ़ा दिया, लिखने के लिए अलग चीज है। ये जो अव्यक्त मुरली एक जो मैं रोज पढ़ूंगा, वो ना तो मुझे लिखनी है, ना किसी को सुनानी है, ना भाषण देना है, ना समझाना है, कुछ नहीं करना है, केवल मुझे धारण करनी है, और पूरी 6 पेज की मुरली से एक लाइन भी यदि मैं धारण कर लूं तो बहुत है। इस लक्ष्य के साथ एक अव्यक्त वाणी। अब एक अव्यक्त वाणी अपनी व्यस्त दिनचर्या में पढ़ना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, इतना आसान नहीं है। सब कुछ करते हुए, सारी ज्ञान की बातें करते हुए भी हम कह रहे हैं एक अव्यक्त वाणी रोज। और वो जरूरी नहीं कि ये साल की हम कर रहे हैं तो यही साल की, रैंडम कहीं से भी ली जाए कोई भी, और उसे ऐसे पढ़ो कि जैसे पूरा प्राण उसमें डुबो दो, इतनी एकाग्रता से, इतने ध्यान से, इतने एकांत में, इतने मौन में। उस मौन में क्रांति होगी, उस मौन में पड़ी हुई वह बात अंत चेतना में नव प्रकाश की किरण लाएगी और वहां परिवर्तन होगा। फिर तब तक परिवर्तन नहीं होगा, कितने भी क्लास सुन लो, किसने भी क्लास करा दो, दोनों ही बातें, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, करना और कराना, सुनना। मुख्य बात है स्वाध्याय, मुख्य बात है स्वपुरुषार्थ, रिवाइज करना है बैठकर कि क्या कहा। पढ़ना कम, सुनना भी कम, रिवाइज मनन ज्यादा करना। जैसे कोई क्लास भी सुनी, उसके तुरंत बाद उस क्लास को अंदर रिवाइज करने की कोशिश करना, क्या क्या बताया गया, और 24 घंटे के अंदर रिवीजन होनी चाहिए। क्योंकि विचारक कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर जो चीज रिवाइज हो गई वही हम मेमोरी में ठहरती है, नहीं तो उड़ जाती है। यदि हमने 24 घंटे तक मुरली सुनी या पढ़ी या कोई क्लास सुना पढ़ा, उसको रिवाइज नहीं किया तो उड़ जाता है। इसके लिए 24 घंटे के अंदर तुरंत रिवाइज करना। तो अभी हम आज की मुरली रिवाइज करेंगे। तो आज क्या कहा बाबा ने सुबह, आप बताएंगे। हाँ, ए सजनिया तुम किसी स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम ब्राइड्स हो, मैं ब्राइड ग्रूम हूं। इस संबंध से भी भगवान को याद करना। उसमें भी एक है साजन सजनी, प्री मैरिज वैलेंटाइन, एक है दूल्हा दुल्हन, एक है पति पत्नी, मैं पतियों का पति हूं, एक बीच का है जो आज बोला ब्राइड ब्राइड ग्रूम, और एक है साजन आशिक माशुक। ये तीनों ही संबंध है। और क्या बोला आज, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी सबको पावन बनाने की। और कौन सी प्रतिज्ञा करनी है सबको पावन बनाने की, और क्या क्या कलयुग के वाइब्रेशंस का तुम पर प्रभाव ना पड़े, तुम स्वराज्य अधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति वैभव तुम्हें आकर्षित न करे, इंद्रियों को जीतना ही योगी की परिभाषा है। ज्ञान सुनाना परिभाषा नहीं है योगी की। जो संयमित है, जिसकी सारी इंद्रियां संयमित है, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, जिसने इंद्रियों को वश में किया है वह योगी। कितना ज्ञान पढ़ा है, कितना पांडित्य है, कितना प्रकांड पंडित बना है पढ़ पढ़कर, यह योगी की परिभाषा नहीं है। योगी अर्थात जितेंद्रिय, योगी अर्थात ब्रह्मचारी, योगी अर्थात तपस्वी, योगी अर्थात वैरागी, ये 3-4 चीजें चाहिए तो ही योगी कहा जाएगा। योगी अर्थात जिसने अहंकार को मारा। और क्या कहा आज, देह सहित देह के सारे संबंध को भूलो, सगर योगी वायुमंडल से सेफ रहना है। रह जाओगे जब ये बन जाए स्वराज्य अधिकारी बनोगे तो, और ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है, और आठ हो गया। हाँ, वो जो चीजों ने हमें बाप से बेमुख किया है, वो हर व्यक्ति वस्तु वैभव संबंध जिसने हमें भगवान से दूर कर दिया है, उनको समाप्त कर दो, हटा दो। जब तक वो है तब तक हम दूर ही रहेंगे, समीप आना है तो ये काम करना पड़ेगा। झूठी माया, झूठी काया, ये काया भी झूठी है और ये माया भी झूठी है। झूठा सब संसार, मीरा का भजन है। और सतोप्रधान सन्यास, और वर्ल्डली स्टूडेंट हो, आज था या कल था? कि आज था। गॉडफादरली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और जो शिव बाबा को, वो अपने आप को पतित बनाते हैं। कितनी बड़ी परिभाषा दी है पतित की, जो याद नहीं करते वो पतित बनाते हैं। और घोर अंधियारा, पहले तो ये देखना है हमारे अंदर क्या है, प्रकाश या अंधकार। भारत के लिए जो जो बातें कही है, भारत रोगी हो गया, भारत कंगाल, भारत इंसॉल्वेंट, वर्थ नॉट अ पेनी, नास्तिक, कोई काम का नहीं, ऑर्फन, पतित, रावण राज्य, नर्क, रौरव नर्क, ये सारा भारत के लिए जो भी कहा है, हमारे अंदर क्या है वो चेक करना है। और हाँ, ओम शब्द का अर्थ बताया है, ओम शब्द का सिंपल अर्थ है क्या, मैं आत्मा शांत स्वरूप। संसार ने बहुत विस्तार किया है इसका। और मामे कम याद करो, और कौन कौन से, कौन कौन से? अच्छा, भगवान बाबा ने अपने लिए, बाप कभी सर्वव्यापी नहीं होता है। गीत सुनाया ना, कौन सा गीत था, दुखी होकर पर रहम करो, तो जब बाप कहा तो सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। तो कहने का भाव, मुरली से कुछ ऐसी चुनिंदा, कुछ ऐसी बातें निकालनी है जो हमको लगे कि बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, और फिर उनको रिवाइज करते रहना, स्टडी करते रहना, लिंक करते रहना, जो इस पॉइंट से रिलेटेड पुरानी बातें जो आई है उसके साथ लिंक, न्यू विथ ओल्ड, अननोन विथ नोन, जो पता नहीं उसको जो पता है उससे लिंक करना, एसोसिएट करना, ये काम करते रहना है। ठीक है, तो अपने पुरुषार्थ को रिवाइज करना, प्राप्तियों को रिवाइज करना, ज्ञान को रिवाइज करते रहना। ओम शांति।